ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17 से 21। 21वां श्लोक बोर्ड पे लिखा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। भूतानां यः संवासः तपायामिव सुव्रते देवेन कत्तनीतानां उन्नीतानां सकर्मभिः। भूतानां समस्त जीवों का यह इस संसार में संवास साथ साथ रहना, प्रपायां जल पीने के स्थान प्याऊ सदृश एव सदृश सुव्रते हे भद्रे देवेन उच्च प्रबंध द्वारा एकत्र एक स्थान पर नितानाम लाए जाते हैं, उन नितानाम दूर ले जाए जाता है स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों के कारण। अनुवाद तात्पर्य शिष्य मदर्शी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक रागीर पास पास एकत्रित होते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों को के अनुसार भी अपने अपने गंतव्यों को चल देते हैं। तात्पर्य प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसंकार विमुदात्मा कर्ता मिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर अपने को उन कर्मों का कर्ता सोचने लगता है जो वास्तव में प्रकृति के द्वारा कार्य संपन्न होता है। भगवद गीता 3:27। सारे जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कर्म करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम पूरी तरह उच्च नियंत्रण में रहते हैं। सारे जीव इस जगत में इसलिए आए क्योंकि वे श्री कृष्ण के समान भोग करना चाहते हैं, और इस तरह वे प्रकृति द्वारा विभिन्न मात्राओं में बद्ध होने के लिए भेजे जाते हैं। भौतिक जगत में तथाकथित परिवार एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने पर छोड़े जाने पर ही बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थायी रूप से एकत्रित हुए हैं वो अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करते रहेंगे। एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान है जो नदी की लहरों के साथ साथ बहते रहते हैं, और ये तिनके कभी कभी भवन में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों के द्वारा विलग किए जाते हैं तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं। हिरण्यकश्यप यद्यपि दैत्य था, किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी। फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को अपनी अनुज वधु अपनी माता तथा भतीजों को जो सलाह दी वो बहुत अच्छी थी। यद्यपि दैत्यों का ज्ञान में अत्यंत बड़ा चढ़ा दैत्यों को माना जाता है, लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि को नहीं लगा सकते और इसी के कारण दैत्य या असुर कहलाते हैं। किंतु देवतागण बड़ी बुद्धिमानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.13 में इस प्रकार हुई। अतः पुंभि द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः द्विजश्रेष्ठ यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपने नियुक्त कर्तव्य अर्थात कर्म या धर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है वह है भगवान हरि को प्रसन्न करना। देवता या देवतुल्य बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे, चाहे उसकी वृत्ति कुछ भी हो। कृपया आप मेरे पीछे अनुवाद को दोहराएंगे। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर एकत्रित होते रहते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्य को चल देते हैं। हरे कृष्ण। भूतानाम यह सम्मा सह प्रपायाम सुवृत्ति दिव्य एकता नाम उन्नीता नाम स्वकर्म भी अज्ञान दिव्य ज्ञानंजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं जैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले सोयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीयुतवनकमलम् श्रीगुरूर्नवश्रवंश श्रीरूपम् साग्रजातम् सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखन वितंश्च मुखम करोति वाचां पंगुं लंघयद्गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम् श्री गुरु नदिन तारिन जयतं सुरत पंगु मम मंद मतेर गति मत्सर्वस्व पराम भोजो श्री राधा मदन मोहन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस सुबह के भागवतम कक्षा में। तो जैसे आप जानते हैं नित्य प्रति पाठ करते आ रहे हैं, इस पाठ के अनुसार आप लोग ये जाने कि किस प्रकार उन दैत्यों को एक ऐसे प्रवृत्त ऐसे कार्यों में उन्होंने प्रवृत्त किया जिससे समझ रहा था हिरण्यकश्यपु कि इससे विष्णु का और वैष्णवों का हानि होगा। तथ्य यही है कि कभी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी ताकत हो करके भी विष्णु और वैष्णवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे हिरण्यकश्यपु उन्होंने प्रवृत्त किया और उसी टाइम कहते कि एवं विप्रकृत लोक दैत्य इंद्रानु चरण मुह दीवम देवाह परित्यज्य भूवि चेरुल लक्षिता। और उस समय सारे देवता लोग कहते अपने स्वर्ग को छोड़ करके अलक्षित रूप से अर्थात छिपे रूप से भूमि पर विचरण करने लगे। सहज है कि यहां दान पुण्य बंद करा दिया, फलस्वरूप देवताओं का खाना रुक गया, कौन भूखा मरेगा, चलो तो नीचे जाते हैं। वो लोग यहां भूमि पर विचरण करने लगे और इधर न हिरण्यकश्यपु ने क्या किया श्री नारद मुनि इसको बता रहे 17वें श्लोक में, क्योंकि 17 से 21 तक मुझे बोला गया है। कहते हिरण्यकश्यपु भ्रातुः संपरेतस्य दुखितः, अपने भाई के निधन से हिरण्यकश्यपु को बहुत दुख हुआ था, बहुत दुखी था, अत्यंत दुखी था। उनके क्रोध का वर्णन तो आप सुन चुके, लेकिन उनके भीतर दुख भी उतना था, बिच्छू का दुख, ने भाई मारा गया और इसी के कारण उनका हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हो रही थी। न कृत्वा कटोदकारिणी न भ्रातृपुत्रान सांत्वयत। उन्होंने सबसे पहले जो प्रेतात्मा के लिए कर्तव्य होते हैं अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि, उदक उनको साध्य इत्यादि देना, जल देना, तो वो संपन्न किया। और उनके बाद में वो अपने संबंधी जिनको अपने महान संबंधी खोने का पीड़ा सता रहा था, दुख सता रहा था, उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। तो सांत्वना दिया जाए, ये लोग ज्यादा रोवे धोए न, स्वयं रो रहा था, ये संसार ऐसा ही है। ये तो खैर घर वाले थे, बाकी देखा जाता है कि जब किसी का कोई संसार में मृत्यु होता है तो बगल वाले आकर के उपदेश देने लगते हैं, इस जगत में किसको रहना है, सबको जाना है, यह है वह है, इसलिए ज्यादा। लेकिन उनके परिवार से जाएगा तो पता चलेगा, तो ये लोग जाएंगे समझाएंगे इनको कि यार जी जैसे आप बोल रहे थे ऐसे ही है, जस्ट लाइक यू है ना। तो ये संसार है, संसार में होना है, सबके साथ हमारे साथ भी होना है वस्तुतः। तो वो अपने परिवार को सांत्वना दे रहे थे, किस किस ने भ्रातृ पुत्रान, अपने भाई के पुत्रों को, इनके पिता मारे गए थे, उनके पुत्र थे, उन पुत्र का नाम ले ले करके वो बोल रहे ने शकुनी संबर दृष्टि भूत संताप, नाम देखिए ना, भूत संतापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मस्वरूप अथो उत्कच, नाम देखिए नाम, ये सब नाम ले ले करके उनको डाढ़ से बंधा रहे हैं। आप चिंता का कारण नहीं मैं बैठा हूं ना, अंत तुम्हारे पिता के समान है ना, चिंता का कोई कारण नहीं है। वो कहते तन मात्रम तो शबानम दितिम च जननीम गिरा, और बहुत सुंदर शब्दों से उन सुंदर भाषा में उन्होंने उनकी माता ऋषभानु, ऋषभानु नाम है उनकी माता का, तो उनको सुंदर वाणी से समझाना चालू किया। सलक्षणिया देश का लज्ञ, और कहते हैं उन विचित्र विचित्र शब्दों के द्वारा उनको उपदेश चालू किया। ये असुर का स्वभाव है, उपदेश देते हैं आचरण, असुर का स्वभाव है। अगर हम भी उपदेश देते हैं आचरण नहीं करते तो उतनी मात्रा में आसुरी स्वभाव माना, यस, दो राय नहीं है उसमें, दो राय नहीं है। और तब तक हम देवता रहते हैं, जब हम भजन साधन करते प्रभुपाद जी लिखते हैं तो देवता रहते हैं, और लेकिन जैसे इतर कार्य में लगते हैं हम असुर है, क्योंकि इतर कार्य केवल भोग का कार्य है। तो इसी प्रकार ये कहते देश कालज्ञ, उन किस समय क्या बोलना चाहिए इसका बहुत बड़ा जानकार था, विद्वान था, जानकार था। तो यदि महाजनेश्वर, तो पूरी जनता के ईश्वर त्रिलोकी के, वो ईश्वर तो अभी नहीं हुए पर वो असुरों के ईश्वर हुए, बाद में त्रिलोकी के ईश्वर होंगे। तो वो इस प्रकार उन सुंदर वाणी से लक्षणिया अर्थात सुंदर वाणी से वो कुछ कह रहे हैं, कहते अम्बम्ब हे वधु पुत्र वीर मारत सुचितुम रिपुर अभिमुख श्लाघ्य सुनाम वदीप सीता, बोलते हे मां सबसे पहले अम्बम्बा दो बार माता का उन्होंने संबोधन किया। क्योंकि वस्तुतः जब कोई संबंधी चला जाता है तो सबसे निकटतर संबंधी मां मानी जाती है, अगर मां बैठी है पुत्र चला जाता है ना तो उनको बहुत बहुत कष्ट होता है। इसे दो बार संबोधन किया अम्बम्ब, इस पर दो बार संबोधन करके वो कहते हे वधु, अर्थात अपने छोटे भाई की वो पत्नी थी इसलिए उनको वधु कहते, हे वधु पुत्रा विरमार्थ सोचित तुम, एक वीर के लिए अब शोक मत कीजिए, इनके हृदय में कितना शोक था है ना, उनको कोई वैराग्य नहीं था, बहुत शोक था, यही संसार है, और यही ये दो रूप है जीव का, बाहर बोलते कुछ है और अंदर कुछ और है, आचरण तीसरा हो रहा है, सब भिन्न 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 भिन्न। एकमात्र कारण कि जीव इस संसार में इन विषयों को अर्जन करना चाहता है, विषयों का भोग करना चाहता है। यद्यपि हम लोग जान गए हैं इस बात को कि भोग केवल केवल मात्र दुख ढो करके आते हैं, तिस पर भी हमारा बुद्धि का प्रवाह उस तरफ रहता है ना, भोगों की ओर रहता है। एक ही कारण है कि जीव भोगों की लालसा में इतना आतुर रहता है, उनका चित्त इतना आतुर रहता है कि बारंबार उन काम क्रोध मद लोभ मोह की लात खा करके भी उन भूत की तरह है। कहते ना, ना लातों के भूत बातों से, हाँ आप भक्त हैं, आप लोग तो बात से संवाद को समझ रहे हैं, उनको मानते भी है, लेकिन कुछ लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, वो बाहर। खैर, तो उसी प्रकार जीव इन भोगों के कारण बहुत परेशान है, और कितना भी परेशान कोई हो जाए, इससे उनको उनके भाग्य में जो लिखा है उनसे एक तिल मात्र भी ज्यादा मिलने वाला कभी नहीं मिलेगा। खान पान को लेकर के कुछ भी क्रिया जिनको जो व्यक्ति को पसंद है भाग्य में उतना ही मिलेगा। जो व्यक्ति ये बात समझ चुका है ना, उनके पास समय बहुत रहेगा, बस संतुष्टि सीख गए। जैसा भी स्थिति हो उस स्थिति से वो संतुष्ट रहता है, वही व्यक्ति भजन कर पाएगा। यद्यपि भक्ति संतुष्टि के ऊपर डिपेंड नहीं है, है? लेकिन संग सिद्धा भक्ति में ये बताया गया है, समदर्शी रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, ये संग सिद्धा भक्ति के अनुसार है। भक्ति नहीं है, भक्ति में सहयोग करने वाला एक वातावरण निर्माण करना होता है ना, तो वातावरण उस प्रकार का हो जाता है उनके अगल बगल में, उनको फुर्सत रहता है। खैर तो कहते और बाकी शोक करते उसकी तरह, कहते वीर मारो तो सोचे तुम पुत्रा, हे पुत्र उन वीर पुरुष के लिए तुम लोग शोक क्यों करते हैं? अरे बड़ा वीर था, और वीरों को क्या इच्छित है, उनकी इच्छा क्या है? तो बोलते रिपोर के श्लाघ्यम सुरानाम वध, तो सुरवीर व्यक्ति को अपने शत्रु का दांत खट्टा करके उनको एक बार बता करके है? उनके बाद उनके सामने मर जाना, वो तो उनकी इच्छा है। और वो इनको बहुत श्लाघ्य, समाज भी उनको, और समाज केवल नहीं उनका पुनर्जन्म में उनको स्वर्ग मिलता है, बहुत प्रसिद्ध है ना वीरों के लिए। तो स्वर्ग गया मर करके, नरक नहीं गया है, क्यों चिंता कर रहे? चिंता का कोई बात नहीं है ना, एक कहने का अर्थ है उनको ये इस प्रकार समझाने। सुराम वध इप्सित श्लाघ्य रिपुर अभिमुखे, शत्रु के सामने वो जो मर जाता है लड़ते हुए वो स्वर्ग में जाता है, और समाज में उनकी खूब प्रशंसा होती है, सुरवीर है ना, बड़ा सुरवीर था, लड़ते हुए मर गए, तो उनकी कीर्ति भी होती है और स्वर्ग भी मिलता है। तो इसलिए तुम लोग को शोक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए सिद्ध साई बात कहते हैं ठीक है कि ना, उनकी तो कीर्ति बढ़ी, उनका तो सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा तो संबंधी गया ना, मान लीजिए, तब यह श्लोक आता है, आज का श्लोक कहते भूतानाम संवास प्रपाय इम सुब्रत है सुब्रत। सुब्रत का अर्थ आपके पास सुंदर बुद्धि है, अथवा सुब्रत का अर्थ उन सुंदर व्रतों से जो गति मिलती है, स्वर्ग जैसी गति मिलती है, वैसा गति को प्राप्त हुआ है तुम्हारा पुत्र, हे सुब्रत अथवा हे मां। यहां कौन रहने के लिए आता है? है वो तो यहां से सिंगल कराना पड़ता है, रिटर्न लेकर के आते हैं सब लोग, यहां आकर के सिंगल भक्त लोग करा लेते सिंगल, बस अभी रिटर्न नहीं आना है ना, बाकी सब रिटर्न लेकर के आते हैं, सबको जाना है, छोड़ के जाना है। तो हेमा कौन यहां रहेगा? एक व्यावहारिक उपदेश कर रहे, जैसे संसार में व्यावहारिक एक दूसरे को उपदेश करते, ऐसा उपदेश है। यद्यपि ये असुरों का जो उपदेश है उसमें कोई बलिवार इसको सुनकर कोई भक्त नहीं बन सकता है, याद रहे, लेकिन भक्ति के निकट ऐसा वातावरण उत्पन्न करने वाला प्रवचन तो निश्चित है। ये पूरा प्रवचन आप देख लिए अभी तत्व का, इनके बाद वाले श्लोक से वो तत्व प्रारंभ करते हुए उठाएंगे, जीवात्मा क्या है इस विषय में चर्चा करते हुए उनको सांत्वना प्रदान करेंगे। लेकिन आज के श्लोक के ऊपर हम कुछ विचार करेंगे, जैसे श्री प्रभुपाद महाराज ने विचार दिए हैं उनके ऊपर और ज्यादा विचार करेंगे। कहते देवन एकत नित्यानाम और नित्यानाम, मतलब जो ये अभी वर्तमान में मां हम लोग जो एकत्रित हुए थे या एकत्रित रहते हैं तो देव नेत्रेण कहते हैं, वो तो ईश्वर के कारण ऐसा होता है। ईश्वर को तो असुर भी मानते हैं, है ना, वो मानना पड़ता है, पर वो ईश्वर विष्णु नहीं है, विष्णु तो मेरा शत्रु है, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं ये सब सांत्वना देकर, वो तपस्या के लिए जाएंगे, आगे तपस्या करेंगे ना, ये मेरा शत्रु है सबसे बड़ा, वो ईश्वर थोड़ी है। अभी क्या असुर नहीं बोलते हैं, अरे कृष्ण थोड़ी ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं है, है ऐसा उनका मानना, असुर स्वभाव है ना। कितना भी बड़ा भक्त हो लेकिन अगर उनका अधपतन हो जाए, उनके बाद में जैसे देखो इनका इच्छा था, एक दिन मैं क्लास में सुन रहा था तो हमको थोड़ा उचित नहीं लग रहा था, श्रवण किया, इनकी प्रशंसा क्यों, हिरण्यकश्यप की क्या प्रशंसा है, हा कोई प्रशंसा है उनकी, जय विजय के रूप में हम लाख प्रशंसा कर सकते हैं उनकी, लेकिन अभी वर्तमान में वो असुर है, उनसे क्या मिलेगा उपदेश, वो भक्ति पर एक बार भी विष्णु का नाम नहीं लेता, नाम लेता है तो दांत पीस करके नाम लेता है विष्णु, उसके उपदेश से क्या लाभ है, लेकिन तिस पर भी जैसे चाणक्य पंडित कहते सुवर्ण अगर कहीं से भी गटर से भी मिले नाली से, उनको उठाकर धो धा करके जेब में रखिए, काम में लग गया, ऐसा है। ये कोई भक्ति पर उपदेश नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य लेते हैं, ये एक दूसरा बात है, उनको समझाने के लिए और हमको थोड़ा ढाढ़स बंधाने के लिए, बाकी इनके प्रवचन से कुछ नहीं है, न तो उनके भाई, असुर असुर है। अरे जो लोग का आचरण बिल्कुल विरुद्ध है उनसे कैसे भक्ति निकलेगा, कैसे भक्ति का पोषक हो, पोषक होगा उनका प्रवचन, नहीं कत्ते ही नहीं। वो कितने भी महान होंगे वैकुंठ में होंगे, वैकुंठ में जाएंगे तो हम पूजा करेंगे, आगे नारद जी प्रशंसा करते थे, लेकिन आचार्य लोग लिखते हैं कि नारद जी ये सोच के प्रशंसा करते, आखिर है विष्णु का भगत ना, थोड़ी प्रशंसा की जाए, कोई बात नहीं, है ना। देखिए बहुत समझना चाहिए भागवतम को, भागवतम क्या है, उनको आने वाले जो बीते हुए श्लोक आने वाले श्लोक उन सब का अन्वय देख करके इनको प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा भागवतम शास्त्र के प्रति अपराध होगा, और जिस उद्देश्य से हम भागवतम का पाठ करते हैं वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं है कि विष्णु पार्षद है इसलिए वो गोपियों से विशेष हो गए, अरे फालतू बात है। इनका प्रवचन भी किसी को भक्त नहीं बना सकता है, क्यों ना, उनका आचरण विरुद्ध है, विरुद्ध आचरण वाले व्यक्ति से भक्त नहीं बनते, लाखों लोग इकट्ठा होकर के सुनते हैं उनको लेकिन एक भी भक्त नहीं बनता है, प्रभुपाद जी सीधा बोल देते हैं चाहिए नहीं ऐसा, उसका क्या लाभ है। जीव के जो असली उद्देश्य हल नहीं होता है उस श्रवण फालतू है, बोलते हैं कोई काम का नहीं है, इसलिए उनका प्रवचन प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन हमारे लिए अर्थात भक्ति देने वाला नहीं है, पर एक संग सिद्धा भक्ति उनको कहते, विश्वनाथ गिरी ठाकुर उनको सिंधु बिंदु में लिखा है, संग सिद्धा भक्ति है उसकी, ये भक्ति के साथ रहने के कारण उनकी महानता है, अन्यथा लाख गुण हो कितना भी कोई गुणवान है उन गुणों की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, मर जाने के बाद क्या साथ में आता है, जैसे भौतिक संपदा साथ में नहीं आती है उसी प्रकार उनका कोई सुंदर आचरण भी साथ में नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाएगा ना, और देवता बनकर 36,000 तो पहले भी योग कर लिया भगवान से, 36,000 काल दूर रहेगा, 36,000 वर्ष है ना, क्या लाभ किया? कोई लाभ नहीं है। लाभ इसी वक्त मनुष्य जीवन में उठाना चाहिए। देखिए इसी से ये बात मिलता है। यहां कहते हैं कि देवन एकत्र नितानाम नितानाम स्वकर्म भी, यहां इन एक दूसरे जीवों को जो लाया जाता है वो देव नेत्रण, क्यों ना किसी की व्यक्ति प्रशंसा की है और किसी का निंदा किए है, घर वालों में भी संबंधियों में भी। हा हमारा ही संबंधी घर में रहने वाला व्यक्ति हमारी निंदा करेगा, करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हमने की है पूर्व जन्म में। इसलिए देखो पीछे अगर जाएंगे तो पीछे लिखा गया है कि निंदन स्तव सत्कार नकारार्थम कलेवरम न प्रधान परियोर राजन अभिवेकेन कल्पितम। एक श्लोक दिया नारद जी ने पहले बोला इसको, हे राजन कहते हैं कि ये केवल उन शरीर को मैं मानने के कारण, उन शरीर के संबंध से ये सब बात चलती है। ये निंदन है, सत्कार है, या उनका अभिनंदन है, कुछ भी है, तो ये कहते हैं कि केवल उन अज्ञान के कारण पर, माने इन भौतिक शरीर से पर आत्मा, कहते प्रधान पर, यो प्रधान माने प्रकृति, इन प्रधान से सब कुछ निकला है ना, जो भी सामान और पास है, तो पहले तो प्रधान का जन्म होता है प्रकृति से, इसे कहते हैं कि प्रधान पड़ियो राजन अविवेकेन कल्पितम, ये तो अविवेक के कारण आरोपित होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रशंसा में पढ़ करके समय नहीं गवा देना चाहिए। कोई प्रशंसा किसी व्यक्ति की करते, ठीक है चलिए चलिए मैं आपके साथ, अरे आप अपना काम करो ना, अपना काम क्या है, अरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम ये तो अपना काम है ना। लेकिन प्रशंसा में अटक जाने वाला व्यक्ति या निंदा में अटक जाने वाला व्यक्ति, उनके चित्त में हमेशा कीड़ा रहता है, है? और वो भजन में बैठे हुए भी भजन नहीं करते, होता ही नहीं, कैसे होगा? जब तक चित्त में क्रोध भय इससे आक्रांत चित्त रहेगा, बक्से अमर सिंधु बोल रहे हैं कि कैसे मुकुंद की भक्ति उधर उस हृदय में स्फुरित होगी ना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उन देह से पर चलता है, देह को एक साज रख करके चलता है, तब भजन होता है। देखिए जो हमको दुख मिलता है, कहते हिंसा तथा अभिमान दंड पारुषुर यथा, कहते वैषम्यम इभूतानं मम अहम इति पार्थिव, इन पार्थिव शरीर को अहम मानने से, मम अहम इति पार्थिव भूतानाम, सारे जीव कहते हैं इसलिए इसके कारण एक विषम स्वभाव उनका हो गया है। हम सबका एक विषम स्वभाव है, हमें करना चाहिए भजन, लेकिन एक परिवार में एकत्रित होकर के एक दूसरों की निंदा प्रशंसा हम लोग करते हैं। इवन एक समाज में, भक्तों के समाज में मिलकर के भी हमारा क्रिया ही रहता है, प्राकृत स्वभाव घसीट रहना, उनको छोड़ने का चेष्टा करना चाहिए। जितनी मात्रा में वो छोड़ा जाए उतनी मात्रा में अवकाश किसका, न भक्ति का। याद रहे संग सिद्धा के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, किसी को इन्हें पकड़ लेना चाहिए, मैं भक्ति का वर्णन कर रहा हूं, जिस संघ के कारण व्यक्ति आराम से भजन साधन कर सकता है। निकटतर सद्गुण रखेंगे इससे भी व्यक्ति रखेंगे सत्कार न्यकार से, तो कोई टेंशन नहीं होगा, बिना टेंशन हमारा भजन चलता रहेगा। कहते हैं कि उसी प्रकार व्यक्ति को ये जो कुछ भी उनके साथ दुर्व्यवहार का दुख मिलता हो या सत्कार के कारण हर्ष उनको होता है, तो केवल देह अभिमान के कारण, मैं ये देह हूं, यह देह ध्यास जो आत्मा के ऊपर उनका है वो उनको लेकर के चलते हैं, इसलिए कहते हैं कि विषम परिस्थिति है। यही विषम परिस्थिति का वर्णन है। देव ने कत्र नित्या नाम उन्नीत्या नाम स्वकर्म भी, ये अपने कर्म के कारण जो हमारा कर्म था, किसी की निंदा किसी की स्तुति हम लोग आज भी करते रहते हैं, भविष्य में उसी प्रकार हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है ना, वो जो कुछ भी कहे हमारे लिए हमको प्रतिक्रिया नहीं देना है। प्रतिक्रिया देने से प्रकृति को हम मौका दे देते हैं कि हमको उनके साथ कर्म का बंधन में बांधते हैं। प्रतिक्रिया नहीं देना, अच्छा ठीक है गाली दो ठीक, हाँ कोई बात नहीं, रिएक्शन से बच जाएंगे। जो प्रकृति की प्रतिक्रिया कर्म बंधन है, उन बंधन से बच जाएंगे, हमारा भजन सुष्ट जो होगा बहुत सुंदर भजन चलेगा, और दुख भी नहीं है, शोक भी नहीं हो रहा है, प्रशंसा से कुछ भी नहीं हो रहा है, बेस्ट एकदम सरल वातावरण है, उस वातावरण में भगवत भजन चलेगा संतान। खैर इसमें यह बात बता रहे हैं कि संसार में जीवों का जो मिलना है उसी प्रकार मिलना है, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। एक कहते हैं श्री प्रभुपाद महाराज कोट किए हैं एक बात को, उन्होंने कहा है कि देखिए जैसे स्तोत्रो वेगेन बालुका, उन श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद कहते कोयम स्यात्तव राजेंद्र भवान यमुन सोचती न तुम चतम सृष्ट पुरे दानी मत परम। इसी 36 स्कंद में चित्रकेतु महाराज के वैराग्य के लिए ये बात बोली जा रही है, उनकी भक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है, और यह प्रवचन वैराग्य के लिए है। सुंदर है, लेना चाहिए, लेकिन वैराग्य तक सीमित, उसकी सीमा है, इन सारे प्रवचनों की एक सीमा है। चित्त में वैराग्य बैठ जाए, राग कहीं ना हो, आराम से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण में चित्त विनिविष्ट कर सकता है। हमारा इसलिए नहीं होता है कि राग अंदर पड़ा पड़ा है, या विरुद्ध विषय के प्रति हमारा जो ईर्ष्या देश इत्यादि चलता है, इसी के कारण हमारा अटकाव है। बहुत सुंदर पॉइंट है, या तो संबंधी के कारण ममता के कारण हम लोग अटक रहे हैं। देखिए चित्रकेतु महाराज जब अपने पुत्र उनके शव के पास ऐसे पड़ा था, सब तुल्य होकर के पड़ा हुआ था, तो उसी समय अंगिरा जी आए तो नारद जी भी उनके साथ चल दिए, चलो उपदेश के लिए जाना ना, मैं भी साथ में चलता हूं। नारद जी भी चल दिए थे और वो आकर के उपदेश करना चालू किया। को अयम सात तम राजेंद्र, हे राजन तुम्हारा ये क्या लगता है, प्रश्न किया, क्या लगता है तुम्हारा, नहीं हमारा पुत्र है, पुत्र कहां है, डेड बॉडी है, पुत्र को रखो, पुत्र नहीं है, पुत्र चला गया। बोले ठीक है, तो पूर्व में इसके साथ क्या संबंध था तेरा, 3 साल का संबंध है ना, 2 साल का संबंध हुआ ना, उसके पूर्व में कितना संबंध था। हम लोग इसी संबंध में मर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा अमूल्य जो एक मानव जीवन का जो अमूल्य समय है, वो समय उन केवल अहंकार ममता में कट जाता है, जिस समय से उन परमार्थ सिद्ध होता है, सर्वोपरि अर्थ भगवत प्रेम जिससे सिद्ध होता है, उस समय को हम गवा देते हैं, हमारे हाथ से बह जाता है। देखिए या तो कुछ समाज या तो संबंधियों के लिए कुछ वस्तु बचाना, इसी राजेंद्र कहते हैं कि तुम चाहे कतम सुष्ट पूरे इदानी, अभी क्या, अभी तेरा क्या संबंध है, अभी तो चल बसा है, क्या संबंध है, कुछ नहीं, और पूर्व में क्या संबंध था, कुछ नहीं, तेरा क्या लगता है, कुछ नहीं। अभी हम लोग लग रहे हैं एक दूसरे के, कोई पति लग रहा है तो कोई पत्नी लग रही है तो कोई बेटा लग रहा है, कोई क्या क्या लग रहा है, उन सब छोड़ छाड़ करके आ जाना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, है ना, सबको छोड़ो, संबंध को कुछ छोड़ देना चाहिए, प्रवचन साधन में प्रॉपर लगना चाहिए। देखिए यहां कैसा है, वो कहते कि यथा प्रयांति संयंति सूत्र विघ्न बालुका न संयुजनते व्युजनते व्युजंते न तथा कालेन देहिन। जिस प्रकार उन नदी में उन जल के प्रवाह एक स्रोत के कारण कुछ बालू का नीचे एकत्रित होती है और धारा जब कुछ इधर उधर होती है तो उन बालू के कण बिखर जाते, भविष्य में कभी न मिले, ठीक उसी प्रकार है। यहां जो संबंधियों का मिलाव है ठीक उसी प्रकार का है। इससे संबंध को दृढ़ करने वाला वस्तु जो है उनको काट देना चाहिए हृदय से। संबंध काट लेने से वो उनका बंधन जो है ना कट जाता है, उनके साथ जो एक लगाव है वो लगाव कट जाएगा। भक्त छट 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 उस प्रकार भगवान का भजन करते हुए लगाव को काटता रहता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कटे इन समस्त लगाव, है ना, यही कार्य भक्त लोग करते हैं। भगवान भजन से अपने आप भगवान में आसक्त होने से ये आसक्ति चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसी में उलझे रहते हैं तो कहते संयोजनते नहीं, तो कहते व्यूजनते तथा काले ने दे ही ना। इसी प्रकार जैसे बालू का एक दूसरे निकट आती है उस प्रकार काल के वेग के कारण निकटना और बिछड़ना होता है, या निकट आना और बिछड़ना होता है, ये काल का प्रभाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी में गिरा हुआ है, एकदम जबर प्रवाहित हो रही है नदी, उसमें गिरा है, तो पहले बचने का प्रयास करना चाहिए कि बचाने का, बचने का। हम लोग बचाने में फेर में पड़े तब तक टाइम चला जाता है ना, देखते हैं ना, ये बचाओ वो बचाओ, इसको करना ये करना, डूब जाता है ना। यही हालत है हमारा, हम स्वयं। और नारद जी और भी उपदेश में कहते हैं, ये पहले स्कंद में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे, अरे न तुम तो काल के मुख में हो और अपने चाचा को बताना चाहते, न तटराष्ट्र चले जाने के बाद शोक कर रहे थे, पर क्या बचा पाएंगे ना। आधा अगर अजगर के मुख में हम पड़े हैं और हम दूसरे को बचाना चाहते हैं तो देखने वाला व्यक्ति क्या और रहे, बदमाश रहेगा। अपना स्वयं का बचाव करो ना, दूसरे के बचाने के लिए चलते हैं, है ना। हाँ, एक बात है, भक्ति परक कार्य बचाने वाला है, इसलिए उस कार्य का उपदेश, उसके लिए जो कुछ भी करना होता है उनको बचाना बोलते हैं। स्वयं काल के मुख में होते हुए भी उनको बचाते रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि उससे हेल्प मिलती है। उससे क्या हेल्प मिलती है, जिनको हम बचाते हैं, जिनको हम प्रचार करते हैं, उनमें हमारा शेयर रहता है, है ना? वो अपने आप भगवान अपने आप पैसा चला जाएगा खाते में, हाँ, बस हो जाएगा। हा, ये भक्ति बढ़ाना है, यस, है ना। तो ये बात है, इसलिए इस कार्य को नहीं, बहुत भौतिक कार्य को उनको छोड़ करके जो कार्य होता है उन कार्य से व्यक्ति को विरक्ति रखना चाहिए। हाँ, ये उपदेश आज के श्लोक में वो नहीं माने राजा, फिर भी शोक कर रहे थे, तो नारद जी ने कुछ अंजलि डाल करके उनके बेटे को जिंदा किया, चित्रकेतु के बेटे को। उनके बाद में जो उनका उपदेश है ना वो बहुत अद्भुत है। वो कहते हैं कि कस्मिन जन्मिन जन्मनियमि न मयम पितृ मात्रो अभवन न कर्म वीर ब्राह्मणस्य देवतिर्यक नयोनिषु। मतलब देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो बेटा तुम्हारा काल मृत्यु हुआ था, कोई बात नहीं, मैं तुमको जीवन देता हूं, तुम तुम्हारे संबंधियों को खुशी रखो, और जो तुम एक राजा के पुत्र हो उनका छोड़ा हुआ राज्य तुम भोगो। तब वो बता रहे नारद जी, अरे आप भी जो बात करते हैं, बोले क्या है मान्य नारद जी, बोले क्या है, तो बोले कश्मीर जन्मनी अमी मयम पितृ मात्र भगवान, ये किसी जन्म के मेरे माता पिता है, हमको क्या मालूम, मैं करोड़ों माता पिता का मैं पुत्र हो गया हूं, ये तो हमारी बात है। ये हमारे विषय में चर्चा है, प्रत्येक जीव के विषय में चर्चा है, ये दूसरी किसी की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन कर्म कहते हैं कि नारद जी देखिए, उन मेरे कर्म के कारण मैं नाना प्रकार की योनियों में अनेक अनेक शरीर लेकर के घूमता रहा, लाखों करोड़ों माता पिता मैंने किए, तो उन देव देवता योनि मनुष्य योनि या पशु योनि में बार बार भ्रमण करता हूं। ये किस जन्म के मेरे माता पिता है मालूम नहीं। कहते हैं बंधुर ज्ञात अरिर मध्यस्थ मित्र उदासीन विद्विष सर्वेषां भवन्ति क्रमशोमिथा। बोले यहां विभिन्न योनियों में जीव जन्म लेता है तो यही जीव का समाज बारंबार एकत्रित भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, कर्म के कारण एकत्रित भी होता है, लेकिन एक भिन्न शरीर के साथ एक भिन्न बदलाव होकर के विभिन्न शरीर में कहते हैं व्यक्ति घूमता रहता है। तो कहते हैं कि इनमें बारंबार कोई मध्यस्थ व्यक्ति बनता है, कोई दुश्मन बनता है, होता है ना, बीच में अपना ही व्यक्ति दुश्मन हो जाता है ना। कल माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करने वाला बेटा, लेकिन पत्नी आने के बाद, इसमें माता पिता का भी कुछ कर्म है, लेकिन दोष ज्यादा पुत्र को लगेगा। यस, हा उनको दोष आदोष से लगेगा। मैं कई बार प्रभु जी हमारा माता पिता, इसलिए मैं परिवार को छोड़ दिया। तुम्हें को पत्नी को छोड़ो, पत्नी को छोड़ना, माता पिता को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा पत्नी को, पत्नी नहीं माता पिता हूं, पत्नी नहीं चाहती इसलिए माता पिता को साहब नहीं चाहते हैं ना। गृहस्थों का मामला है, ब्रह्मचारियों को लेना देना अच्छा है, बच्चे ब्रह्मचारी लोग बच्चे हुए, और कभी करना भी नहीं आगे पत्नी पत्नी, क्योंकि बहुत जन्म में कर लिया है पत्नी। ऐसा नहीं ब्रह्मचारियों को भी पत्नी का अनुभव है, नहीं कि ब्रह्मचारियों को पत्नी का अनुभव नहीं है, इसी जन्म में बने ही, लेकिन अनुभव तो है। इस गृहस्थ की पिटाई देख करके भी विवाह नहीं करना चाहिए, संबंध बंबंध ये जोड़ना ही नहीं, नया संबंध, एक तो पहले से संबंध है। तो कहते सर्व ये भी सर्वेशम भवन्ति क्रमशः, एक दूसरे के कई बार शत्रु कई बार मित्र हम लोग बन चुके हैं, कई बार एक भिन्न विभिन्न योनि में घूमते हुए ये सब कार्य कहते हैं। कहते यथा वस्तु पण्यानि हेमादिनी तत पर्यन्तंती न नरिष्य एवं जीवो योनिषु कृतेषु। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है उपदेश का इसमें, ये वस्तु तो ये उपदेश मैं मेरे लिए पाठ कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ हूं ना, मैं अपने लिए पाठ कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल उपदेश है पाठ कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखो मैं अभी भले ही या वानप्रस्थ जीवन बिता रहे हैं, लेकिन है तो साथ में है ना, इसलिए ये मेरे पर भी लागू हो रहा है ये सारा बात। तो कहते जिस प्रकार कोई वस्तु वो बेकी हुई, जैसे सुवर्ण इत्यादि जो है, तो वो सुवर्ण इत्यादि एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाता रहता है, बिक जाता है तो जाता है। उसी प्रकार जीव अपने कर्मों के कारण बिका हुआ भटक रहा है, एक बिके हुए व्यक्ति की तरह उन कर्म उनको ढो करके ले जाता है, एक दूसरा परिवार में फेंक देता है। यद्यपि नहीं जाना चाहते, कौन जाना चाहता है, कौन छोड़ना चाहता है, अच्छे परिवार हो या बुरे परिवार हो, छोड़ना कौन चाहता है, लेकिन जाना पड़ता है, क्या करें। तो इसी प्रकार कहते हैं तेद नित्य संबंधो ही अनित्यो, कहते दृश्यते निश्चु न यावत अस्य ही संबंध ममत्व तावदेव ही। ये जो कुछ भी ममता समता है वस्तुतः अगर जाना जाए तो जब तक ये शरीर है तब तक ममत्व चलता है। जब वस्तु हमारे पास होती है तब तक उनमें उनकी ममता होती है ना, बाकी वो छूट जाएगी तो उनकी ममता भी छूट जाएगी, हम नहीं भी छोड़ना चाहेंगे तभी भी छूट जाएगी। इसीलिए सारी ममता ट्रांसफर कर देनी कहां, भगवान श्री कृष्ण में। सारी ममता समता सारा संबंध जो कुछ भी है उन सारा संबंध भगवान के साथ जोड़ लेना चाहिए, और उसमें जो प्रधान संबंध हो जाए भगवान के साथ, और चित्त जिनमें अभिनिविष्ट हो जिस संबंध में, उसी संबंध को ध्यान करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राय गौर हरि ब्रह्मानंदे।